प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता लेकर हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपका साथी अनीश श्रीवास। श्रोताओं, शुक्रवार का वो दिन जब हम करते हैं अपने एक श्रोता से बातचीत, और इस बातचीत के माध्यम से हम अपने उस श्रोता के बारे में जानते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके बारे में जितनी सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस श्रोता को अच्छे से जान सकें और समझ सकें। तो हमारे आज के जो सप्ताह के श्रोता हैं उनका रेडियो की तरंगों से 50 साल पहले मन की फ्रिक्वेंसी ऐसी जुड़ी कि आज भी वो रेडियो को अपनी जान व जिंदगी समझने लगे हैं। आज भी वो देश ही नहीं बल्कि रेडियो तेहरान, रेडियो श्रीलंका, रेडियो जापान, रेडियो नेपाल और रेडियो चाइना के साथ देश के 25 से अधिक रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रमों को सुनते हैं और उनसे जुड़ते हैं। इसी के चलते ही इन्हें ना केवल 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त भी हुए हैं बल्कि इसी रेडियो के माध्यम से उनके आज 1500 से भी अधिक साथी बन चुके हैं। तो श्रोताओं, आप भी सोच रहे होंगे कि इतने हमारे जो श्रोता हैं वो महान, वो कौन से श्रोता हैं, है ना? तो चलिए, आपकी उत्सुकता को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं और सीधे लिए चलते हैं हमारे आज के सप्ताह के श्रोता के पास। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, हमारे श्रोता जी। तो हम आपके ही माध्यम से आज आपके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, बताएं अपने बारे में।
नमस्कार सर जी।
नमस्कार।
सबसे पहले तो रेडियो अर्पा के सभी साथियों को और सभी श्रोता भाइयों को, नवीन रेडियो श्रोता परिवार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की ओर से नमस्कार।
बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और आपने नाम बताया नहीं अभी तक।
हाँ, नवीन रेडियो श्रोता परिवार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदय भान ठाकरे।
बहुत बहुत स्वागत। तो श्रोता, आप जान ही गए कि हमारे आज के श्रोता हैं उदय भान ठाकरे जी, और उदय भान ठाकरे जी का नाम जो है श्रोता जगत में एक जाना पहचाना नाम है। तो आइए अब उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। तो उदय भान जी, हम सबसे पहले तो आपके बारे में संपूर्ण परिचय जानना चाहेंगे।
जी सर, मैं अभी एक तो सबसे पहली बात है कि मैं कम से कम 50 साल से रेडियो सुन रहा हूँ
जी,
और इस वक्त मेरी उम्र 66 होने वाली सर 3 महीने के बाद। उस जमाने में सर दो ही शौक हुआ करता था घर के अंदर का। एक पहला शौक था उपन्यास पढ़ना और दूसरा था रेडियो सुनना।
जी जी।
तो उपन्यास पढ़ना तो जरा मुश्किल पड़ जाता था क्योंकि क्या है, उपन्यास पढ़ते पढ़ते घर में जरा डांट पड़ जाती थी। रेडियो एक ऐसा साधन था कि रेडियो बजता था तो सभी सुन सकते थे।
जी जी।
उस दिन से जब ऐसा लगाव लगा सर रेडियो सुनने का, तो आज सुनते सुनते मुझे 50 साल हो गए और बहुत से रेडियो स्टेशनों से मैं कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और पत्र व्यवहार करता रहता हूँ।
जी जी। तो उदय भान जी, जैसा कि आपने कहा कि रेडियो सुनने से घर परिवार में जो था वो माहौल शांत रहता था, तो मतलब आपके परिवार में पहले से भी रेडियो सुनने की परंपरा रही है?
जी सर, मेरे दादाजी का एक बहुत बड़ा रेडियो था जो उस जमाने में वाल वाला रेडियो बजता था। जो एक रेडियो बजता था तो पूरा परिवार सुनता था।
जी जी जी।
फिर धीरे से एक ऐसा मौका आया कि हर घर में रेडियो होने लगा। आज वो मौका आया कि हर एक के जेब में एक रेडियो ऐप द्वारा सुनने लगे।
जी जी जी।
इस रेडियो का चलन 3 माध्यम में से हुआ सर। पहला वाल वाला रेडियो, उसके बाद में छोटे ट्रांजिस्टर, और आज ये मोबाइल के माध्यम से ऐप द्वारा।
जी 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 जी। तो उदय भान जी, जैसा कि आपने बताया कि रेडियो सुनने का जो माध्यम है वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया और अब वो रेडियो से आकर के मोबाइल की फ्रिक्वेंसी में आकर के वो सिमट गया है, तो पहले उस समय और अभी के प्रसारण में आप क्या अंतर पाते हैं?
पहले से जो प्रसारण होता था वो जरा उसकी क्वालिटी में जरा परेशानी आती थी। जैसे अपने जैसे स्टेशन मिला है तो कुछ गड़बड़ाहट, खड़खड़ाहट, ऐसे मतलब पूरी क्लियर आवाज नहीं आती थी।
जी,
पर
जी।
आज के जमाने में टेक्निकल इतना अच्छा हो गया सर कि बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, आप कहीं भी बैठ के अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं।
तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे रेडियो ही लगातार सुनना चाहिए, या रेडियो से आपका जो लगाव है वो क्यों बढ़ा, मतलब किस तरह से बढ़ा? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि रेडियो जो है वही मेरे पसंद का साधन है? बस
सर जी, होता क्या है, हर एक इंसान को अपना अपना शौक रहता है।
जी जी।
मैं पढ़ाई करता था पर पढ़ाई में इतना मेरा मन लगा नहीं, सीधी बात है सर जी।
जी जी।
अब क्या हुआ सर, गाना सुनता था तो गाने सुनते सुनते अपने को ऐसी आदत पड़ गई कि ये अच्छा लगता है अपने को गाना। पढ़ाई के साथ साथ अपन गाने भी सुनते थे। धीरे से ऐसा मौका आया कि अपने वो फरमाइश भेजना चालू कर दिए, एक फरमाइश अपना नाम आया, बहुत खुशी कि मेरा नाम आज रेडियो आया। ऐसे करते करते आगे करना चालू कर दिया अपन ने, तो बहुत नाम आने लगा सर। इसी प्रकार एक बार रेडियो तेहरान, सबसे पहले मेरा अंतरराष्ट्रीय रेडियो है रेडियो तेहरान,
अच्छा जी,
उसकी कांटा घुमाते घुमाते जैसे उनने हिंदी में बोला ये रेडियो तेहरान है, मेरी उंगली वहीं थम गई उस कांटे पे
जी।
उस वक्त क्या सर समझ नहीं आता था किस जगह क्या लगा था, हम लोग कागज में लिख के रखते थे कितने नंबर पे सुई की कांटा कहाँ रुका कितने बजे बजा,
अच्छा
टिक मार के लगा के रखना पड़ता था सर
जी जी।
उस वक्त अगले दिन फिर उसी टाइम पे उसी लकीर पे उसी स्केल पे हमको कांटा मिलाते थे, तब जाके हमें महसूस होता था कि हाँ आज ये स्टेशन लगा है। इस प्रकार सुनते सुनते सर आज सुन रहा हूँ मैं
लगातार 50 साल तक ये सफर चल रहा है आपका।
जी हाँ सर।
तो सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि फरमाइश भेजना आपने सब शुरू किया तो आपको बहुत ही अच्छा लगा जब आपको फरमाइश आपके रेडियो के गीत में आए, कौन सा कार्यक्रम था वो?
सर ये सबसे पहले तो श्रीलंका से बसता था सर, वो कार्यक्रम सुनता था मैं, तो बहुत पहले की बात होगी सर
जी जी,
बस
जी।
वहीं से चालू हुआ था मेरा, उसके बाद तो जो अपने वीर भारती है ये बहुत लेट चालू करा सर मैंने, इससे पहले मैंने रेडियो जापान रेडियो चाइना रेडियो इसी में कार्यक्रम सुनता था, इसमें क्या होता है इधर फरमाइशी प्रोग्राम कम आते थे, बस ज्ञान विज्ञान की बातें चलती थी सर अधिकतर, तो हम लोग इसी में इंटरेस्ट लेते थे, और हम मुझे बहुत से महीने में एक कार्ड मेरे को ग्रीटिंग कार्ड कोई बाहर से आते थे हम उसी में मतलब भाग लेते थे। ऐसे करते करते आज मेरे पास में अमेरिका जर्मन जापान चाइना रशिया यहाँ की मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं कुछ गिफ्ट है बहुत सारे जमा कर रखे सर मेरे पास।
ते पुरस्कार आपको किस माध्यम से प्राप्त हुआ जाए भांजी?
सर अपन जो कार्यक्रम सुनते थे और वो वहाँ से बरोबर भेजते थे, ये हमारे अच्छे श्रोता है करके वो वहाँ से बरोबर भेजते थे सर, महीने के महीने भेजते वो लोग।
वाह, तो उदय भान जी आपसे बात अभी आगे और हम करेंगे ही, पर बात आगे बढ़ाने से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का पहला गीत।
सर मेरी गाने तो इतने हैं सर कि जो गाना छूट जाए वही दुख है, पर सबसे अच्छा मेरा पसंदीदा गाना है फिल्म मन की आंखें का है
जी जी,
जो 1970 में रिलीज हुई थी
जी जी,
आवाज है मोहम्मद रफी साहब जी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का
जी जी,
और गीत के बोल है दिल कहे रुक जा रे रुक जा कहीं ते कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, इसके मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र वहीदे रहमान जी।
वाह, आपने जितने डिटेल में इस गीत के बारे में बताया बड़ा ही अच्छा लगा, और इसी से समझ में आता है कि आप कितनी पसंद के साथ आप किसी गीत को अपने माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। तो चलिए जल्दी से पहुंचाते हैं अपने श्रोताओं तक आपकी पसंद का ये पहला गीत।
कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात है कहीं पर नहीं, पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर जल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले झरनों का ये शोर बह झर झर पानी, मद भरा समापन झूला झूला हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। झलके नील गगन का रूप बहरंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे छंटी जिनसे धूप खर बाह पसारे, चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जिनके फूलों जैसे गाल सब शोक हथेली, इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल बड़ी छैल छबीली, मन चली अदा छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा सुध रही कहाँ, दिल कहे रुक जा रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
सप्ताह के श्रोता, सुनने वाली सभी श्रोताओं को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि हमारी आज हो रही है बातचीत उदय भान ठाकरे जी से, जो रहते हैं छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा के पास ये कहाँ रहते हैं इस पर हम और भी चर्चा करेंगे उनसे। सीधे अब लिए चलते हैं आपको उनके पास। तो उदय भान जी, आप जहाँ निवास करते हैं हमें कृपया उसके बारे में बताएं।
सर, मैं नागपुर और पचमढ़ी के बीच में छिंदवाड़ा गाँव पड़ता है
जी,
वहाँ पे रहता हूँ मैं छिंदवाड़ा में। हमारे यहाँ से नागपुर 125 किलोमीटर करीब है, और पचमढ़ी के नाम शायद आपने सुना होगा, ये हमारे घर से भी 125 किलोमीटर है।
अच्छा जी जी जी।
ये हम बीच सेंटर में, हमारा एक छोटा सा गांव है छिंदवाड़ा शहर, यहाँ रहता हूँ सर मैं।
वाह, और यहाँ रहकर आप क्या काम करते हैं ये भी बताएं।
सर वैसे तो मैंने काम तो आए जिंदगी में बहुत किया सर
जी जी,
पहले एमपीबी में काम किया, अब किस्मत इतनी अच्छी हुई सर कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूँ क्या नहीं, किस्मत से मेरी एक कैजुअल मेरी नौकरी आकाशवाणी छिंदवाड़ा में लग गया, जो मैं खुशी खुशी अपना काम करता हूँ।
वाह वाह वाह।
और काम करता हूँ गार्डन का और ऑफिस का सर।
अच्छा, बहुत बढ़िया, तो मतलब आकाशवाणी को संवारने का काम आप करते हैं।
जी हाँ सर।
बहुत बढ़िया, तो कितना अच्छा लगता होगा ना कि जिस चीज़ को आपने अपना पैशन बनाया आप काम भी वहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा अनुभव होगा ना योदा भांजी।
जी सर, ये तो मैं सोचूंगा कि मेरी मन की जो मुराद पूरी हो गई है।
जी 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 जी।
आदमी क्या है, अगर जैसे पूजा करता है उसको मंदिर जाने का मौका मिलेगा तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार से मैं गीत सुनता हूँ, और गीत सुनते सुनते किस्मत से मेरी जो छोटा मोटा काम जो भी है वो आकाशवाणी छिंदवाड़ा में लग गया।
जी जी जी।
तो आज मैं कार्यक्रम सुनता भी हूँ और वहाँ काम भी करता हूँ, और फरमाइशी भी सब जगह भेजता रहता हूँ सर।
बहुत बढ़िया, हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे उदय भान जी।
जी सर, सबसे पहले तो मेरी धर्मपत्नी का नाम है चंद्रभागा ठाकरे।
जी जी।
वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है।
जी।
मेरे दो बेटे हैं नवीन ठाकरे और दीपक ठाकरे।
जी।
मेरी दो बहू है शिखा ठाकरे और नीलिमा ठाकरे।
जी जी जी।
और बड़े बेटे का लड़के का नाम है विरन ठाकरे और छोटे बेटे के लड़की का नाम है गौरी ठाकरे। हम इतने जाने सर।
वाह, भरा पूरा परिवार है इसका मतलब आपका।
जी हाँ सर।
बहुत अच्छा लगा आपके परिवार के बारे में जान के। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे उदय भान जी, आपके 50 साल का जो इतिहास है आपका रेडियो से जुड़े रहने का, इसमें आपने अलग अलग केंद्रों के कार्यक्रम को आपने सुना है और बहुत सारे चीज़ों को आपने समझा भी होगा, जाना भी होगा, तो आप क्या पाते हैं रेडियो से, और या हम ये मतलब एक तरह से समझना चाहेंगे कि आपने क्या पाया है आपने?
सर इसमें तो क्या है कि पाया क्या है, इसमें सबसे अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात है अपने दिल को सुकून ज्यादा मिलता सर।
जी जी।
चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे कितना भी काम हो, रेडियो बजता रहता, अपना काम होता रहता, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये सबसे अच्छी बात है सर। और इसमें क्या था, कितना भी दिल उदास हो तो गाना सुनने में और कार्यक्रम सुनते सुनते अपना जो दिनचर्या पूरी अच्छे से कट जाती सर।
मतलब आपने कहा कि मतलब आपके हिसाब से कि ये जो है रेडियो सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, समय भी कट जाता है, आपका काम भी हो जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा। आप मैं देख रहा था और आपके बारे में जब जानकारी मुझे मिली तो मैंने देखा कि आपने रेडियो चाइना भी आप सुनते थे, नेपाल भी सुनते, जापान सुनते, ये अलग अलग केंद्रों में किस किस तरह के कार्यक्रम आते हैं जिसको आप सुनते हैं?
सर हर स्टेशन के कार्यक्रम अलग अलग रहते हैं सर।
बताएं कृपया।
अब जैसे चाइना वाला तो वो फरमाइशी प्रोग्राम भी देता है।
जी जी।
उसके अलावा उसमें ऐसे बहुत से सब्जेक्ट बना दिया गया है कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं।
जैसे
तो उसमें आपकी पसंद होती है और एक हेलो फ्रेंड्स होता कार्यक्रम चलता है चाइना वाले में। इसमें श्रोताओं के मन की पसंद की गाने सुनाते हैं। अपन इधर भेजना पड़ता था, आजकल पहले पोस्ट कार्ड द्वारा जाता था, आजकल पोस्ट कार्ड बंद हो गया, हम ईमेल द्वारा भेजते कार्यक्रम।
अच्छा जी जी जी। तो ये जितने रेडियो जापान, रेडियो नेपाल, रेडियो चाइना और ये तेहरान, रेडियो श्रीलंका, यहाँ हिंदी प्रसारण है मतलब सारी चीज?
आधे आधे घंटे का होता है कार्यक्रम, इसमें आधे घंटा कार्यक्रम होता है जो धीरे धीरे करके प्राय आजकल सब बंद हो गया, सिर्फ दो ही स्टेशन जो अभी हिंदी कार्यक्रम कर रहे हैं, पहला रेडियो जापान अभी है और रेडियो चाइना, बाकी सभी रेडियो बंद हो चुके सर।
तो वहाँ फरमाइशी ही चलता है, हिंदी फरमाइशी?
जी नहीं, वहाँ फरमाइशी नहीं चलती, वहाँ ज्ञानवर्धक बातें रहती है, अपने देश का कल्चर, अपने हिंदुस्तान का कल्चर, इसके बारे में बातें होती रहती, ज्ञान विज्ञान की बातें होती रहती सर यही।
अच्छा वाह।
वो लोग विदेश वाले फरमाइशी गीत नहीं सुनाते सर, वो अपना फरमाइशी गीत सुना के अपना टाइम मतलब नहीं करते, वो लोग सिर्फ ज्ञान की बातें करते, इसी तो चाइना आज इतना आगे बढ़ चुका सर।
बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी बात कही आपने। कितना अच्छा लगता होगा ना उदय भान जी, जब दूसरे देश के रेडियो स्टेशन से अपने देश के बारे में बातें सुनने को मिलती हो, तो कितना एक अलग आनंद आता होगा ना?
जी सर।
बढ़िया
सर, एक बात और बता दूं?
बिल्कुल बताएं बताएं।
अगर हमारे घर में, अगर मोहल्ले में, पड़ोस में अगर 5-6 हजार जो श्रोता बैठे, कोई भी बैठा है और स्टार्ट रेडियो स्टार्ट होने पर मैं बता सकता था कि रेडियो कहाँ का बज रहा है।
अच्छा।
या आवाज उनकी आती है तो मैं वो आवाज ही बता सकता था कि जापान की लेडीज बोल रही है या चाइना की लेडीज बोल रही है या रशिया की लेडीज बोल रही है। हमारे पड़ोस में बोलते थे, बोले आपको कैसा मालूम हो जाता है कि रेडियो जापान बोल रहा है, ये रेडियो चाइना की आवाज है लेडीज की, ये रेडियो जापान की है। तो सर गानों में इसकी आवाज भर चुकी है कि रेडियो स्टार्ट होते हुए मैं बता सकता था कि रेडियो कहाँ का बज रहा है।
वाह।
क्यों सर, बहुत दिनों से, काफी दिनों से सुन रहा हूँ रेडियो।
जी जी जी।
तो मन में बिल्कुल बस गई है उनकी आवाजें।
तो विदेश से जब हमारे केंद्र या हमारे देश की बात होती है तो आप उस कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं या फिर अकेले मिलते हैं, समय के हिसाब से सुनते हैं, कैसा उसको डील करते हैं उस पूरे समय?
सर मेरे घर में तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे 5-6 कमरे का रूम है, 5-6 कमरे में मैंने स्पीकर लगा रखा हूँ वायर द्वारा।
अच्छा।
मैं ये चाहता हूँ मैं अगर बाहर गया तो बाहर भी आवाज आनी चाहिए, पीछे गया तो पीछे भी आवाज आना चाहिए।
अच्छा जी जी।
जिस कमरे में जाऊंगा उस कमरे में सर मुझे रेडियो की आवाज आती रहती है, कार्यक्रम बस सुनते रहता हूँ मैं।
अच्छा।
इसके चलते मेरी पत्नी के साथ कई बार झगड़ा भी हो चुका है।
कैसे?
बोले आप इतना शौक रखते हो, आपके पेपर देने जा रहे हैं कि आप इतना कार्यक्रम सुनते। मैं कहा देखो भाई सबका अलग अलग शौक रहता है, मेरे को सुनने दो। तो आज तक मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया सर।
वाह, मतलब आपने अपने साथ साथ पूरे परिवार को जोड़ के रखा है इस रेडियो की तरंग से। ये बड़ा अच्छा लगा, और ये तरंग जो है जो आपके प्रेम और उसको भी बनाए रखा हुआ, ये भी जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब उदय भांजी, आपकी पसंद का दूसरा गीत हम जानना चाहेंगे।
हाँ सर जी, अब दूसरा गाना है मेरा पसंद का, फिल्म है आया सावन झूम के, जो 1969 में रिलीज हुई थी। आवाज है मोहम्मद रफी साहब जी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का।
वाह।
और गीत के बोल है, ओ माजी चल, ओ माजी चल, ओ माजी चल, तू अकेला तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माजी चल। कलाकार थे इसके मुख्य धर्मेंद्र और आशा पारे।
वाह, चलिए आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये दूसरा गीत।
माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, सुनने वाले सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत हमारे कार्यक्रम में इस मधुर से गीत के बाद। जो श्रोता अभी जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम से, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हमारी आज बातचीत हो रही है उदय भान ठाकरे जी से, जो कि निवासी हैं छिंदवाड़ा के। तो स्वागत है पुनः आपका उदय भान जी। आपके बारे में जब अभी पता किया या जानकारी ली, तो हमें पता चला कि आप जगह जगह जो आप जो हैं श्रोता सम्मेलनों में भी लगातार शामिल होते रहते हैं, और अभी वर्तमान में आप भुवनेश्वर एक रेडियो मेले से भी होकर आप आए हैं, तो हम आपके माध्यम से इस पूरे रेडियो मेले के बारे में जानना चाहेंगे।
जी सर, वैसे तो मैं काफी जगह जाता रहता हूँ श्रोता सम्मेलन में। इस बार 13-14 फरवरी को मैं भुवनेश्वर गया।
जी जी,
भुवनेश्वर में जाने के बाद मेरे बहुत से मित्र जो बाहर रहते, सभी से मुलाकात हुई, सभी वहाँ पे आए भुवनेश्वर में।
जी जी,
मुलाकात की उनसे, अच्छे अच्छे उद्घोषक लोगों से मुलाकात हुई मेरे।
जी,
कोई हैदराबाद के हैं, कोई छत्तीसगढ़ के, कोई रायपुर के, ऐसे सभी मित्र वहाँ मिले, मुझे खुशी हुई।
जी जी जी,
वहाँ रेडियो मेला लगा था, रेडियो मेले में अनेक प्रकार के रेडियो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। उनको देख के ऐसा महसूस होता था इतने पुराने जमाने के रेडियो आज भी मौजूद है।
जी जी,
आजकल के वर्तमान में जो नौजवान है, उन लोगों ने बड़ा रेडियो कभी देखे नहीं सर। वो लोग जब देखते हैं तो वो ताजुब करते हैं, इतना बड़ा रेडियो जमाने में कैसा बचते थे, कैसा रखते थे। इसी प्रकार सर मेला पूरा घुमा मैंने, बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जो कार्यक्रम हुआ वो भी बहुत अच्छा लगा सर मुझे।
तो उदय भान जी, आप वहाँ रेडियो मेले में आप गए, तो आपको वहाँ जाने की इच्छा ऐसे क्यों हुई, वहाँ वहीं ही जाना चाहिए, ऐसा क्यों लगा?
नहीं सर, मैं एक बात, मैं अधिकतर सभी श्रोता सम्मेलन मिश्री जाता हूँ कि बहुत से श्रोताओं के मेरे पास फोन कॉल तो आते रहते हैं।
जी जी,
भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, आप आइए। मैं सबसे पहले दिल्ली में गया था, रेडियो रशिया का कार्यक्रम हुआ था, दिल्ली में गया था पहली बार।
अच्छा,
और दिल्ली मेरे लिए जाना, यानी ये सोचो कि पठानकोट से आदमी निकल के बम्बई जाना है।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
पर मेरे आकाशवाणी के कुछ सर लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे पूरा डायरेक्शन दिया, आप ऐसे जाइए ऐसे जाइए, और मैं दिल्ली सर अकेला पहला पहुंच गया था मैं। उसी प्रकार से जब मैं वहां गया तो मेरे सभी दोस्त लोग मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद सर मैं रेडियो जापान का, रेडियो इंदौर में वेरिटास रेडियो है फिलीपींस का, उसमें जाता रहता हूँ। फिर भुवनेश्वर में जाता हूँ, वहां से हमारे जो सुब्रत कुमार पति जी है भुवनेश्वर वाले, उनसे संपर्क बना रहता है, वो कार्यक्रम के बारे में बताते हैं तो हमें जाने की इच्छा होती है। बस इसी प्रकार सर मैं कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, वहां जाता हूँ, एक से एक दोस्त, अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते, मुझे बहुत अच्छा लगता सर। मुझे आज मेरे पास कम से कम 1500 से अधिक मित्र हो गए सर, ये मेरे सबसे बड़ी अच्छी बात है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था मुश्किल से मेरे 3 या 4 मित्र हुए थे, पर ये रेडियो के माध्यम से मेरे पास कम से कम 1500 मित्र हुए सर, ये मेरे बहुत खुशी है।
जी जी जी,
रात बेरात इनके फोन आते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, कार्यक्रम के बारे में मेरे सलाह मशवरा करते रहते हैं।
श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो आज के सप्ताह के श्रोता उदय भान ठाकरे जी हैं, उनसे भी हमारी भेंट हुई, कहां अभी हम जब गए थे रेडियो मेला में, और उनसे मिलकर हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। भुवनेश्वर की रेडियो मेले में जो है हमने भेंट की अपने उदय भान ठाकरे जी से, और उनके बारे में बहुत कुछ जाना था, और इसी बातचीत के दौरान ही आज के इस कार्यक्रम की भूमिका भी हमने तय कर ली थी, है ना उदय भान जी?
जी सर, वो क्या है, मैं पहले तो आपका रेडियो अर्पा का बोर्ड देखा मैंने, मैं आपकी आवाज सुना था पर आपको पहचानता नहीं था सर मैं कि आप कौन है।
जी जी जी,
जैसे रेडियो अर्पा का बोर्ड देखा मैंने, वहाँ बैनर देखा, मैं बहुत खुशी हुई, चलो का कोई है अपना वाला। फिर फोन के माध्यम से सर आपसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो सर मैं एक सर से मिले, कोई अपने से बात करने वाले हैं सर।
जी जी जी,
बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने परिवार से, अपने दोस्तों मित्रों से मुलाकात करवाया था आपसे।
जी जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा था आपके पूरे परिवार से, साथियों से मिलकर, और चंपारण के हमारे जो साथी भी आपके साथ थे उनसे भी मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा था। और आपने पूरी बातचीत के दौरान एक जगह की बात की थी अभी उदय भान जी, पतालकोट। पतालकोट जो है मेरे ख्याल से आपके छिंदवाड़े के आसपास ही है।
जी, मेरे घर से कम वो 40 किलोमीटर दूर है सर।
जी जी, ये जगह जो है मैंने इसके बारे में कुछ कुछ सुना हुआ है, पर मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक वहाँ के बारे में कुछ जानकारी पहुंचाना चाहता हूँ, तो पतालकोट के बारे में।
पतालकोट एक दर्शनीय स्थल है।
जी जी,
जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो बहुत ऊंचे पे है, और पतालकोट जो नीचे गांव है, यहाँ सर 12 गांव बसे हुए है। उस जमाने में सर की वहाँ के आदमी ऊपर नहीं आ पाते थे और ऊपर के आदमी नीचे नहीं जा पाते थे।
ओ, जी,
वहाँ
जी।
पूरे आदिवासी लोग रहते थे सर। और अभी अभी वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा वहाँ से रोड का, जो रोड बन चुका है, तो अब आना जाना सभी का चालू हो गया सर। वो तो देखने लायक जगह सर पतालकोट आए जिंदगी, अगर पतालकोट ना देखा तो ना देखा सर।
जी 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 जी,
12 गांव है, वहाँ नदी है, पहाड़ है सब, और वहाँ पे दिन में जल्दी से धूप निकलती है, उसके बाद तुरंत अंधेरा हो जाता सर वहाँ।
जी जी जी, हमने तो ये भी सुना है पतालकोट के किसी गांव में, एक दो गांव में तो ऐसा है जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, हमने ऐसा भी सुना है, ये सही है?
हाँ सर, बताया ना मैंने अभी, वहाँ पे क्या होता है, दिन के ऊपर बिल्कुल जैसे दिन निकलता है तभी थोड़ा सा धूप निकलती है, उसके बाद जैसे सूर्य साइड में जाता है तो जो पहाड़ी रहता है, पहाड़ी की परछाई पूरे गाँव में आ जाती है, तो अंधेरा हो जाता सर।
क्योंकि ये हमने सुना था कि सूर्य की रोशनी जो है बहुत कम मात्रा में वहाँ पहुँच पाती है, और इसलिए हमारी बहुत इच्छा भी है कि वहाँ घूमने की। और एक बार हम छिंदवाड़ा तक गए भी थे, परासिया तक गए भी थे, लेकिन मौका नहीं लग पाया था वहाँ जाने का।
आइए सर, कभी ऐसा मौका मिला, आप सभी से निवेदन है कि जो भी आना चाहता है तो पतालकोट और एक पचमढ़ी दर्शनीय स्थल हमारे यहाँ।
जी जी जी,
ये यहाँ जरूर पधारिए सर, ये अगर नहीं घूमे सर कोई मतलब नहीं हुआ सर।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम
सभी का स्वागत है यहाँ पे।
जी, तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो कोशिश जरूर करें पचमढ़ी के साथ ही साथ पतालकोट घूमने का, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई उदय भान जी पतालकोट के बारे में। और इसी बात के साथ अब तीसरे गीत सुनना चाहेंगे हम आपके माध्यम से।
फिल्म का नाम है बहारे फिर भी आएंगी,
1966
में रिलीज हुई थी। आवाज है महेंद्र कपूर साहब जी की, संगीत है ओपी नैयर जी का
जी,
और गीत के बोल है, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। इसके मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, तनुजा और माला सिन्हा।
वाह, आपकी मधुर आवाज में इस गीत को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं हमारे रेडियो के माध्यम से ये मधुर सा गीत।
सर जी, मैं अभी आपको बात बता दूं।
जी जी बताएं।
मैं हफ्ता भर बाहर घूम के आया तो मेरी कुछ तबीयत खराब हुई, इसलिए मेरी आवाज बहुत खराब है सर, इसलिए कोई श्रोता बुरा ना माने।
नहीं, बुरा क्यों मानेंगे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी आवाज में गीत पहुँचाने की कोशिश की ऐसे समय में जब आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ये तो आप बधाई के पात्र हैं इस बारे में। तो चलिए श्रोताओं, ये गीत आप तक पहुंचाते हैं हमारे रेडियो के माध्यम से।
बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।
सप्ताह के श्रोता में एक बार फिर से स्वागत है आपका उदय भान जी। और उदय भान जी, हमने आपके बारे में जब थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए थी तो हमें ये पता चला कि आप गणेश विसर्जन के बाद अपने घर में 3 दिन का एक रेडियो प्रदर्शनी भी लगाते हैं।
जी हाँ सर। जी, वो क्या होता है सर कि आजकल के युवा पीढ़ी या कोई भी श्रोता बाहर के किसी के पास कोई सामान रहता है तो वो तो सब अपने अपने घर में रहता है। मेरी किस्मत अच्छी है सर, मैंने कम से कम सब सामान को सहज के रखा मैंने। कुछ मुझे गिफ्ट में मिले, कुछ सामान दादाजी के हैं, कुछ मेरे मित्रों ने दिए, कुछ मुझे उपहार मिले। उपहार में तो रेडियो भी तक मिले सर मुझे, और मुझे बाहर से अमेरिका, जर्मन, जापान से पर्स मिले मेरे को, छोटे छोटे पर्स आते जो रेडियो जापान अमेरिका से। ये बहुत सी चीजें ऐसा रखा है सर जो रखता हूँ। और गणपति के बाद क्या होता है सर, आदमी घूमने के लिए निकलता है तो अपना घर रास्ते में चाहे तो उस वक्त बना रहता है स्टेज अपना घर का गणपति का। मैं पूरा सामान सजा के रखता हूँ जिसमें जो चाहे देख सकता है। उसमें पुराने जमाने के रेडियो से लेके छोटे मोटे सर कम से कम 25-30 रेडियो है सब मिला के, सामान वगैरह मिला के, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह है, पुराने जमाने का टेप रिकॉर्ड है, ये सब ऐसा रख देता हूँ जो देखने वाले देखते हैं कि ये क्या चीज है। उनको भी असर होता नहीं है इसमें कैसे, रिकॉर्ड प्लेयर उनका भी देखे नहीं है, उन्हें कैसा बसता है, सुई से बसता है। मेरे पास एक ग्रामोफोन था, वो सारा स्टार्ट खराब हो गया सर, बहुत अच्छा था ना वो, और ग्रामोफोन रहता तो वो भी मैं बजा के बताता था, पर किस्मत से ग्रामोफोन मेरे पास से चला गया कहीं सर।
चला गया मतलब कहीं कोई
किसी ने सर चला गया, पता नहीं क्या हो गया।
अच्छा, वो क्योंकि ग्रामोफोन तो अपने आप में बहुत बड़ा एक समझ लीजिए धरोहर है हमारे लिए।
मैंने सर यहाँ तक कि जो पुराने रेडियो टूट जाते हैं सर,
जी जी,
उसकी 80 तक संभाल के रखा सर मैंने।
अच्छा,
वो छोटे छोटे पैकेट वाले रेडियो आते थे, ट्रांजिस्टर आते थे छोटे छोटे, और जैसे खराब हो गया उनकी 80 जो किट वगैरह रहती ना आज तक संभाल रखा। और एक बात और बताते सर, बताना भूल गया मैं।
जी बताएं बताएं।
जब एक गाना सुनता था उस वक्त पुराने जमाने एक प्रतियोगिता चलती थी, स्लोगन प्रतियोगिता, एक साबुन से निकला था उसके ऊपर 777 साबुन, उसने एक प्रतियोगिता रखा था स्लोगन की। मैंने वो स्लोगन में भेजा तो मुझे सबसे अच्छी बात में ट्रांजिस्टर इनाम नहीं मिला था सर मुझे, टेलीनेट कंपनी का।
अरे वाह,
वो इतना अच्छा था सर उसको कि हैंडल में रखना पड़ता था, हैंडल में सर बनाया था उसका कब्जा कि हैंडल में फंसा दो तो बहुत अच्छा दूर से दूरबीन टाइप दिखता था।
अच्छा।
मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो आए जिंदगी में अपने पहला रेडियो गिफ्ट में मिला अपने को, उस वक्त से जो मिलना चालू हुआ सर आज तक मुझे रेडियो मिलते रहते हैं।
वाह, तो जिस तरह का जुनून आपका रेडियो के प्रति है उदय भान जी, आपके परिवार में आपके बच्चों में है वो जुनून या अभी ठीक है वो स्तर है?
सर, में भी सब सुनते सर।
अच्छा,
जिसमें की हमारा नाती है 7 का हो गया, वो तो उसका नाम जैसे रेडियो में आता नाचने लगता मेरा नाम रेडियो से आया करके।
अच्छा अच्छा, जी 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 जी।
हमारी बहू है, बहू भी घर का काम भी करती है, वो भी फोन इन कार्ड में भाग लेती रहती कहीं पे, जहाँ समय मिलता वहाँ जरूर फोन लगाती है, बात करती है। अब हम भी जितना समय मिलता हम भी मतलब फोन कॉल करते रहते सर।
अपनी बातचीत को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा उदय भान जी, एक बात जो है रह गई उसके बारे में कि अभी रेडियो श्रोता सम्मेलन में हमने बहुत से श्रोता साथियों से भेंट की और आपके साथ भी हमने 2 साथियों से भेंट मुलाकात की, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, ये बात रह गई थी, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में भी बताएं।
हाँ सर, एक मेरा मित्र है मुजफ्फरपुर का, रंजीत कुमार शर्मा।
जी जी,
ये मेरे अच्छे मित्र है, इनके सहायता से मैं जहाँ भी बाहर जैसे दिल्ली में हुआ कहीं हुआ श्रोता सम्मेलन जाते हम लोग बिल्कुल साथ में जाते हैं। एक है रामविलास कुशवाहा, क्रीपुर बिहार का है, कि हम लोग जब भी जाते थे तीनों यहाँ से सेट करके जाते हैं कि हमको वहां मिलना है यहाँ मिलना है, हम बिल्कुल बरोबर जाते। इस बार हम सर अपना परिवार और उन्हें अपना परिवार लेके गया, इसमें दो काम हुआ सर, एक तो घूमना भी हो गया, दूसरा रेडियो सम्मेलन में शामिल भी होने को मिला सर। और एक मेरा मित्र था ओम प्रकाश, वो नहीं आ पाया सर किसी कारण से, नहीं तो हम लोग तीनों जन कभी भी कहीं भी एक साथ जाते रहते हैं, अपने अपने घर से निकलते हैं और एक जगह आके मुलाकात कर लेते हैं। ऐसा हमारा ये हर समय चलता रहता है।
उस आयोजन में हमने देखा था उदय भांजी, आप हमारे एक श्रोता मित्र को एक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, उस पुरस्कार के बारे में भी बताएं।
वो सर वो वहाँ पे कुछ ऐसा सर मेरे को उतना समझ नहीं पाया, वो सबसे बेस्ट श्रोता श्रोता के रूप में उसके पहला इनाम मिला था सर, साल में एक बार एक श्रोता को देते सर।
जी 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 जी,
मुझे बहुत पहले मिल चुका था। इस बार पिछले बार रजनीश शर्मा जी को मिला था
जी, जी।
और इस बार रामविलास कुशवाहा जी को मिला है, साल में एक बार एक प्रतियोगिता में एक अच्छा इनाम प्रमाण पत्र वगैरह देते इनको सर।
तो उसका चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा है या मालूम है, चयन प्रक्रिया क्या होती है?
सर इतना तो बस इतना ही है कि हम पत्रवार करते रहते हैं, सर को अपने मन से वो देते हैं कि अच्छा श्रोता है करके, वो सुब्रत कुमार पति जी है वो खुद देख लेते हैं कि कौन सा श्रोता है कितना भाग लेता रहता है, क्योंकि वो भी कार्यक्रम देते रहते हैं, हम लोग फोन इन कार्यक्रम करते रहते हैं तो उनको मालूम हो जाता कौन सा सक्रिय श्रोता है।
उदय भान जी, ये तो रेडियो के प्रति आपका शौक और जुनून जो है हमने जाना ही, इसके अलावा भी आपके क्या कोई और शौक है?
नहीं सर, एक शौक है मेरा सिर्फ घूमने का सर।
अच्छा हाँ, ये दूसरा शौक
है। अब बचपन से लेके अभी मतलब काफी दिन तक अपने बड़े मुश्किल से घर चलाया सर, अपने समय नहीं मिला घूमने का। अब समय मिला है तो जरूर घूमते हैं, इसमें मेरी पत्नी मेरे बच्चे लोग जरूर साथ देते हैं, पापा जहाँ जाना जाओ। अभी 8 दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, भुवनेश्वर घुमा, अभी आया हूँ, अब इसके बाद में मुझे अगस्त महीने में बुलढाणा में श्रोता सम्मेलन है वहाँ जाने की तैयारी है, और अभी बीच में मेरे को 15 दिन का है मेरे को कश्मीर वगैरह घूमने जाना मेरे परिवार के साथ में सर।
वाह वाह, तो कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमने का प्लान किया आपने?
सर मेरी तो सबसे इच्छा है सर डल झील घूमने की है, जहाँ तम्मी कपूर ने जो गाना गाया था तारीफ करूँ क्या किसकी जिसने तुझे बनाया।
वाह,
बस वहाँ जाके थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ में गांव में शिकारा में बैठ के गाना गाना सर बस हो गया।
कौन सा, यही वाला?
हाँ
सर, तो गुनगुना दीजिए, हम भी सुनना चाहेंगे भाई।
तारीफ करूँ क्या जिसकी जिसने तुम्हें बनाया है।
हाँ सुनाए सुनाए,
याद नहीं आ रहा सर मेरे को, गाना जरा गड़बड़ हो गया सर।
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो अपनी पसंद का फिर इसी बात पे चौथा गीत बता दें फिर।
सर मेरी पसंद का फिल्म एक और है, कहीं दिन कहीं रात, जो 1968 में बनी थी, आवाज है महेंद्र कपूर जी की, संगीत है SH बिहारी जी का, और गीत के बोल है ओ यारो की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए, होगा कितना खूबसूरत ये नजारा दुनिया देखेगी हम भी देखेंगे ओ यारो की तमन्ना है। सर ये गाना जानी वाकर पर फरमाया गया था सर, तो क्या मालूम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे गीत सर, मेरे को रोने गाने वाले सर उतना गाना मेरे पसंद नहीं आता, दिल खुश करके जियो मेरे को बहुत अच्छा लगता सर।
आपकी आवाज से ही लग रहा है कि आप कितने जिंदा दिल हैं।
गाने ऐसे रहे सर कि खुद झूमे और दूसरे को झूमने को मजबूर कर दे, ऐसे गीत रहने जाए सर।
वाह बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, कि सही बात है कि जीवन में जो है हमेशा खुश रहें और खुश रहना भी आना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे साथ साथ देखने सुनने वाले भी खुश रहें।
खुश रहे सर।
चलिए तो इसी खुशी खुशी में सुनते हैं आपकी पसंद का ये चौथा गीत।
ओ यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए, ओ यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए, होगा कितना खूबसूरत ये नजारा दुनिया देखेगी हम भी देखेंगे, ओ यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव में श्रोताओं, और उदय भान ठाकरे जी से हमारी बातचीत लंबी हुई और बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे जानी और बहुत सी चीज़ें रह भी गई हैं, पर हमारे समय की जो सीमा है उसके हिसाब से हम जितनी चीज़ें आप तक पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाने की कोशिश की है। अंतिम बातचीत के दौरान उदय भान ठाकरे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
बस सर यही है कि सभी श्रोता लोग अच्छे से कार्यक्रम सुने।
जी जी।
हर उद्घोषक के बारे में अच्छे से लिखे, अच्छे से समझे उन्हें वो कैसे बात करते हैं।
जी,
और
जी।
किसी भी उद्घोषक को जबरदस्ती ये नहीं करना चाहिए कि हमारा आज गाना शामिल नहीं हुआ।
जी,
उनकी कुछ मजबूरियां रहती है, वो भी अपना कार्यक्रम जो समय रहता है अपने हिसाब से तय करते हैं।
जी जी।
क्योंकि क्या है सर, बहुत जरूरी है उनके लिए, वो कार्यक्रम जो बनाते हैं कैसे दिल लगा के पूरा कार्यक्रम करते हैं वो हमें मालूम है सर, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत अनुभव है कि एक उद्घोषक कैसा किस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं सर।
जी जी जी।
और कभी किसी उद्घोषक का मन ना दुखाए, यही मेरे से एक निवेदन है सभी श्रोता भाइयों से।
आपने हमारे दिल की बात कह दी उदय भांजी, सच बात है। बहुत से श्रोता ऐसे हो जाते हैं जो अलग अलग तरीके से थोड़ा सा हमको किसी न किसी तरीके से हर्ट कर जाते हैं, पर हम ये बात कह नहीं पाते। और वाकई आपने एक बात जो कही कि किसी भी कार्यक्रम को बनाने के पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है, हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत होती है, और हम बहुत सारे चीज़ों को देख समझ करके ही तय करते हैं। पर आपने हमारी बात कह दी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब इस अंतिम पड़ाव में और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से।
बस सर मेरे को आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है।
जी।
और मैं अधिकतर सभी प्राय रेडियो सुनता हूँ, अरपा भी रेडियो सुनता रहता हूँ, पर क्या सर यहाँ कभी कभी रेडियो अरपा बज नहीं पाता, मेरे से ये परेशानी सर।
अच्छा।
रात को भी बहुत ट्रायल करा, वो बजा नहीं सर, मेरे से क्यों नहीं बजा मेरे समझ नहीं आया मेरे को। नेट चल रहा है, दूसरा स्टेशन बज रहा है, पर ऐप द्वारा रेडियो अरपा नहीं बजा सर मेरे से।
अच्छा, तो हम
क्या करना सर आप बता दीजिए, थोड़ा आप ही बताइए।
देखिए अब हम तो चार अलग अलग माध्यमों में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, गूगल स्टोर में भी जाकर के आप चाहें तो वो कर सकते हैं, लिंक के माध्यम से हैं और स्कैन के माध्यम से हैं। मैं आपको चारों माध्यमों के बारे में एक बार फिर से पर्सनल में आपको बता दूंगा, और बाकी जो श्रोता सुन रहे हैं अगर वो सीधे सुनना चाहें तो आप प्ले स्टोर में जा करके हमारे अरपा रेडियो के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें और सीधे सीधे उसमें भी सुन सकते हैं। और अगर नहीं सुनाई देता है उसमें तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप सीधे सुन सकते हैं। तो
जी, मैं बस लास्ट में अपने परिवार का नाम ले सकता हूँ?
बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए लीजिए।
मैं उदयभान ठाकरे।
जी जी।
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। चंद्रभागा ठाकरे।
जी।
दीपक ठाकरे। नवीन ठाकरे। शिखा ठाकरे। नीलिमा ठाकरे।
जी।
और मेरे छोटे छोटे से दो प्यारे से श्रोता है जो अभी सुनने लायक तैयार हो रहे हैं।
जी बताएं।
ग्रंथ गौरी ठाकरे सर।
वाह, इन सभी को मेरा सादर नमन है और सादर प्रणाम।
इसके साथ सभी दोस्तों को भी मेरी ओर से नमस्कार, कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी, आपने अपना कीमती समय हमारे अरपा रेडियो के कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता के लिए दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे अरपा रेडियो से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के सप्ताह के श्रोता उदय भान ठाकरे जी, जो है छिंदवाड़ा के निवासी। इनसे हमने की बातचीत और उनके पसंद के गीत आप तक पहुंचा ही दिया है। अब इसी तरह से अगले हफ्ते भी हम एक नए श्रोता के साथ करेंगे बातचीत और जानेंगे उनके बारे में। तब तक दीजिए अनुमति अनीश श्रीवास को और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
नमस्कार।
सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।